जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहि जो कोप विधाता
गुरु राखहि जो कोप विधाता
गुरु रूठे नहीं को जग त्राता
गुरु रूठे नहीं को जग त्राता
गुरु के वचन प्रति तन जाई
गुरु के वचन प्रति तन
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
अमृतवाणी के चरण में परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की वाणी में चेतावनी से भरा भजन पनघट पर गगरिया फूटल हो कि आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है।
तो भजन है कबीर का कि पनघट पे गगरिया फूटल हो कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो चंदन काठ का बनल खटोलन तापर दुल्हिन सूतल हो पनघट पे गगरिया फूटल हो हाड जरे जस लाकड़ी बाल जले जस घास सब जग जलता देख के भया कबीर उदास उठोरी सखी मोरी मांग समारो प्रियतम मोसन रूसल हो पन घट पे गगरिया फूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो तो पन घट पे गगरिया फूटल हो कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो तो चलती चकिया देख के तिहा कबीरा रोय दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे चहु दिसी धू धू उठल हो पन घट पे गगरिया उठल हो तो घर द्वारे तक औरत जई है कर्म कांड तक सग भाई लोग कुटुंब मरघट लो जई हैं अरुहंस अकेला जाई कहत कबीर सुनो भाई साधो जग से नाता टूटल हो पन घट पे गगरिया फूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो तो पन घट पे गगरिया फूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो चंदन काठ का बनल खटोलन तापर दुल्हिन सूतल हो पन घट पे गगरिया फूटल हो। हड जरे जस लाकड़ी बाल जले जैसे घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। उठो री सखी मोरी मांग समारो, प्रियतम मोसन रूसल हो। पन घट पे गगरिया फूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। चलती चकिया देख के दिहा कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, चहु दिसी धू धू उठल हो। पन घट पे गगरिया फूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। घर द्वारे तक औरत जई है, कर्म कांड तक सग भाई। लोग कुटुंब मर घट लो जई है, अरुहंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता टूटल हो। पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। ये कबीर का एक चेतावनी पद है। कोई भजन होता है साधना की शुरुआत का, कोई अचेत प्राणियों को जागृत करने के लिए चेतावनी के रूप में होता है, किसी किसी भजन में साधना में मिलने वाली विभूतियों का चित्रण। और कबीर के कुछ भजन ऐसे हैं जिनमें प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी कैसी होती है। और कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आती, कारण कि उस वैदिक तथ्य को उन्होंने छिपा कर प्रस्तुत किया, जिससे कि अधिकारी ग्रहण कर ले और अनाधिकारी उसका दुरुपयोग न करे। कबीर की वाणी साधु कड़ी भाषा के रूप में है, कारण कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सदुकड़ी भाषा के नाम पर न कहीं कॉलेज है न कोई व्यवस्था। महात्मा प्राय भ्रमणशील होते थे, जहाँ भी गए वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को थोड़ा स्टडी किया और अपने हृदय में जो अनुभूति है उसके अंश उसी भाषा में प्रस्तुत कर दिया। तो बहुत सी भाषाओं का सम्मिश्रण यही है सदुकड़ी भाषा। कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आती, इसीलिए लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि ये तो कबीर की उलटवासी है, अथवा कबीर तो एक निर्गुण उपासक थे। नहीं उलटवासी है और नहीं कबीर निर्गुण उपासक थे, कारण कि उलटवासी का आशय लोग बताते हैं जिसके बहुत से अर्थ हो। हम कहें वो भी सही, आप कहें वो भी सही। किसी को काशी जानना तो कह दो दक्षिण को चल दो, तुम पहुंच जाओगे। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं काशी ही जाना तो आपको पश्चिम चलना होगा। तीसरा कहता पूरब, कोई कहता कौन। मान लो कोई सचमुच दक्षिण पश्चिम चल ही दिया तो शायद इस जन्म में नहीं पहुंच पाएगा। कैसा अर्थ? अर्थ उसे कहते हैं जो हमें संपूर्ण अनर्थों से बचा के प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दे। ये उनकी एक अनुभव वाणी है। और दूसरी बात,
निर्गुण नाम की उपासना सृष्टि में कभी थी ही नहीं, हो भी नहीं सकती, भविष्य में भी नहीं होगी, आज भी नहीं है। हर महापुरुष सगुण से ही चलता है और प्रवेश के पश्चात उस महापुरुष की अंतिम प्रणति गुणातीत में होती है जो निर्गुण कहलाता है। कबीर भी एक किसी अदृश्य सत्ता के प्रति रात दिन गिड़गिड़ा के चिंतन करने वाला पथिक है कि साहिब का घर दूर लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। भगवान कहीं अलग खड़ा है, अपने कहीं अलग खड़ा है, चढ़ना और गिरना लगा ही हुआ है। आप ही विचार करें कि सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं। कबीर के चिंतन का नाम राम था। यदि वो निर्गुण ही होता तो भला राम राम क्यों रटता। जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला है और उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता है, कबीर किसी को नहीं पहचानता। एक राम नाम की आस, केवल राम नाम से आशावान है। संसार में सुखी कौन, इसका चित्रण करते हुए कहा कि कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी, कहे कबीर सब दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। कहिए कुशल है? बोले हाँ सब ठीक ठाक, बहुत कुशल है, फसल अच्छी, प्रमोशन हुआ। कहते हैं कुशल कुशल कहते कहते जग बिन से, इस क्षण हमने कुशल कहा, दूसरे दिन युधिष्ठिर हिमालय चढ़ गए। आज कृष्ण विजेता और दूसरे दिन कृष्ण को भी तीर लग गया। तो कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल भी कहता जा रहा और क्षीण भी होता विनष्ट भी होता जा रहा है। ये जो कुशल है ये क्षुद्र कुशल, सच पूछो तो काल की फांसी, एक धोखाधड़ी। और कबीर कहता एक राम सारी दुनिया नश्वर, केवल राम अविनाशी, रहे राम अविनाशी। राम ये रहने वाला है, शाश्वत है, अविनाशी है, उसकी शरण में जाओ, तुम भी तुम्हारा कुशल वहीं पर है। इस भजन में अचेत पड़े हुए प्राणियों को सचेत करते हुए कहा कि पन घट पे गगरिया फूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। अनंत योनिया अवघट घाट है और मनुष्य योनि भव सागर से पार होने के लिए उपाय है। इसी आशय को प्रस्तुत करते हैं। पनघट घाट उसे कहते हैं जहां यातायात का साधन हो और जहां आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो तो अवघट घाट। तो ये भव सिंधु, इसमें पार होने के लिए न तो पशु योनि में न देवता ही पार हो सकते हैं, वो भी मनुष्य शरीर से आसावान है। केवल भव सागर से पार होने के लिए कोई उपाय है तो केवल नर्तन भव बारिद कहूं बेरो। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है, यही एक उपाय है। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है। मनुष्य के पास एक वस्तु ज्यादा है, नर्तन। देवता इससे आशावान है, आस लगाए बैठे कि कभी हम गिरेंगे तो जरूर। तो भगवान करुणा करके हमें मनुष्य का शरीर दे दे। इंद्र गिरा एक बार तो गिरगिट हुआ, इंद्रपद से नहुष गिरा तो अजगर हुआ। एक बार इंद्रपद का प्रत्याशी गिरा तो भेड़ा हो गया। गिरेंगे जरूर और कहीं न जाने किस योनि में चले जाए, तो प्रभु कृपा करें कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हम देवता परम अधिकारी, विषय वश्य तब भक्ति विसारी। परम अधिकारी हैं हम, लेकिन विषय से विवश होकर आपकी भक्ति को भूल गए। देवता भी विषयों के गुलाम, और अंत में क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर मृतलोक में आके गिरना और फिर चढ़ना, वो भी आवागमन का एक योनि है। इन महापुरुषों के अनुसार रहे राम अविनाशी, एक परमात्मा अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं होता। तो अनंत योनियां अवघट घाट है, किसी में भव पार होने का उपाय नहीं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो जन आवागमन से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। ये भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा है, जहाज है। तो भटकत भटकत कुकुर शुकुर से चक्कर मारते हुए दुर्लभ मनुष्य शरीर में मिल भी गया। हम घाट पर आ गए, लेकिन है तो शरीर कच्चा घड़ा, कल के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते। तो ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, ढबका लागा फूट गया, बहुरी ने आवे हाथ। माना कि शरीर दुर्लभ है, देव दुर्लभ, बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन है कच्चा घड़ा, कल के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते। कुछ महापुरुषों ने इसको इतना पानी के बुलबुले की संज्ञा दी है, और यह ये गगरिया धोखे ही धोखे में फूट गई। पन घट पे गगरिया फूटल हो तो क्या आपने फोड़ दिया? बोले नहीं, भगवान धोखा हो गया, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। जन्म ते ये माता है, ये मौसी है, ये बहन है, भैया है, पापा है, थोड़े बड़े हुए तो ये हमारा, ये तुम्हारा, थोड़े बड़े हुए तो नन्हे मुन्ने, और थोड़े बड़े हुए इतने में हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, इतने में वो क्षण आ गए जिस क्षण में श्वास का अंतिम काल है। धोखे ही धोखे में हमारा हमारा किया, और ऐसा बिछुड़ा कि फिर दोबारे कभी उनसे मेल नहीं हो सका। तो धोखा नहीं तो क्या, हमारी वस्तु अनायास हमसे ओझल हो गई और फिर कभी देखने को नहीं मिली, तो धोखा नहीं तो क्या। तो कहते हैं हमार वो हमारी एक लगाव सा है, इस धोखे ही धोखे में भगवान गगरिया फूट गई। उस क्षण पर पहुंच गए, उस मिनट पर पहुंच गए जहां शरीर का अंतिम काल है। तो पन घट पे गगरिया फूटल हो, तो क्या आपने फोड़ डाला? तो कहते नहीं, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। हमारे हृदय देश की नगरी को, जहां परमात्मा का निवास है, उस वास को, उस संयम की प्रक्रिया को लूटा किसने? कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। थे तो अपने, लेकिन जब बिछुड़े तो वो फिर कभी मिले नहीं, इसलिए एक धोखा हो गया, एक ठगहाई हो गई। तो भला ये शरीर है कैसा? तो चंदन काठ का बनल खटोलना। अनंत योनियां सब जगह है, कण कण में भगवान व्याप्त है। चंदन तरु हरि संत समीरा, भगवान चंदन वृक्ष है, और उस चंदन की खुशबू सब में है, चराचर जगत में कण कण में व्याप्त है भगवान। लेकिन किसी शरीर से कभी खुशबू नहीं मिली, प्रभु की खुशबू मिली है तो इस नव मनुष्य शरीर के द्वारा मिली है। इसी में अगस्त हुए, इसी में अत्रि हुई, सती अनसुईया हुई, मदालसा हुई, मीरा हुई, तुलसी हुए। जब कभी परमात्मा की खुशबू फैली है तो इस मनुष्य शरीर से, परमात्मा ही चंदन तरु है। इसलिए ये मानव तन इतना दुर्लभ, इतना महत्वपूर्ण कि चंदन काट का, ये चंदन काट है, ये ईश्वरीय खुशबू को फैलाने वाला है, प्राप्ति कराने वाला है। चंदन काट का बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। और इसके अंतराल में आपकी सूरत, आपकी लो प्रशुप्त, जाग बे मोरी सूरत सुहागिन, का सोवत है मोह निशा में उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिन। तो इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति हमारी जो चेतना है, इष्टोन्मुखी लौ है, वो सुप्त है, सोई हुई है, उसको जगाना होगा तब कल्याण हो सकता। कि इसी में खान पान रहन सहन सारी व्यवस्था अनुकूल तो दिखाई दे रही है, हर जा ही क्या है, समय काट ले जाए तो आपत्ति क्या है। इस पर कहते हैं तो हड जरे जस लाकड़ी, बाल जले जैसे घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। ये सुंदर शरीर हाड़ जले जैसे लाकड़ी, बाल जले जैसे घास, पहली ही लपट में जहां चीता पे गया तो सुर ना बाल झुलस गए घास की तरह, और हड्डी वैसे ही जल गई जैसे एक लकड़ी जलती हो। तो कहोगे कि कोई गरीब झोंपड़ी वाले जलेंगे, ऐसी बात नहीं। राजा महाराजा धीराजा चक्रवर्ती उससे राजा से रंग तक सब के सब, सब जग जलता देख के सारे जगत को, देवलोक ब्रह्मा पर्यंत उसी घाट पर आते देखकर भया कबीर उदास, कबीर उदास हो गया। बोले ना, ये समय काटने लायक नहीं, इससे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा, उपाय करना चाहिए। तो उदास हुआ तो किया क्या उपाय, कि उठो रि सखी मोरी मांग संवारो, कह शत्रु संति निजे इंद्रियाणी, तान्य व मित्राणी जीतानी। यानी सृष्टि में शत्रु कौन है, अपनी इंद्रियें, मन और इंद्रियें, यही आवागमन में भटकाने वाली और कोई शत्रु नहीं। किंतु यदि ये जीत ली जाती तो मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण को करने वाली होती है, केवल्य पद प्रदान करने वाली होती है। तो अपनी अचेत इंद्रियों से कहते उठो, सचेत हो जाओ, जागृत जागरूक रहो, सदा सजग रहो, लापरवाही न हो चिंतन में। मेरी मांग संवारो, मेरी मानसिक प्रवृत्ति को संवारो। क्यों? हां, मानसिक प्रवृत्ति को संवारो। दुनिया के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर मांग, परम प्रभु परम पिया परमात्मा के संतुष्ट करने का प्रतीक है मन का संवरना, शुद्ध होना। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम विशुद्ध मन वाले ही मुझे प्राप्त करते, किंचित भी कपट छल छद मन में है वो मुझे कभी नहीं पाता। तो मेरी मांग संवारो, मेरी मानसिक प्रवृत्ति को संवारो, सुधारो। क्यों? कि प्रियतम मोशन रूशल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम है, एक बार उनसे संबंध जुड़ जाने के पश्चात फिर कभी विच्छो नहीं होता, फिर कभी अलगाव नहीं होगा, वह है परमात्मा, वह परम प्रभु मुझसे रूठे हैं। इसलिए मेरी मानसिक प्रवृत्ति को संवारो, और पन घट पे गगरिया फूटल हो, अनंत योनिया अवघट घाट, किसी में भव पार होने का उपाय नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जो भवसागर से पार होने के लिए उपाय है, ये घाट है जहां यातायात संभव है। लेकिन धोखे ही धोखे में गगरिया फूट गई, भाई फिर कर लेंगे, अभी तो बहुत जीना है। अगले पद में कहते हैं हम चलते तो हैं लेकिन जरा दुविधा हमारा पीछा करती है, कभी मन करता कि नहीं नहीं यही सही है, जब और कभी मन करता कि नहीं नहीं भगवान सही है। तो चलती चकिया देख के दिहा कबीरा रोया, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। चलती चकिया देख संसार एक चक्की, उधर ब्रह्म एक पाटला, इधर माया दूसरा पाटला। इन दो पाटों के बीच में साबित बचान कोई, कभी तो हम सोचते हैं नहीं नहीं जगत सही है, ये जो कुछ है ये भगवान का ही संचार है, सब में इसमें सेवा करनी चाहिए, भली प्रकार परिवार में जी के इसी में रहना ही चाहिए, यही सच है। कभी कहते हैं नहीं नहीं हमने कभी नहीं चाहा था, तब भी हमारे स्वजन साथ छोड़ के चले जा रहे हैं एक के बाद एक, कहीं भूलने हो भगवान सही है, ये सही कि वो सही। इन दो पाटों के बीच में साबित बचान कोई, इस दुविधा में कोई साबित बचा ही नहीं, वो निर्णय पर ही नहीं पहुंच पा रहा है। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी विशुद्ध अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, सर्वथा नष्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ये साबित अध कुचला अवश्य हो जाता है, कुछ योनियों की परतें घट बढ़ जाती हैं, यही इसका अधूरापन है। तो साबित बचान कोई तो भला चले कहां गए। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, चौदी से धू धू उठल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, किसी किसी बुजुर्ग के आसपास 8-10 डॉक्टर खड़े रहते, पूरा परिवार स्वजन समुदाय खड़ा रहता है, लेकिन मंज महल में से वो आस्ते से एक दिन आंखें बंद कर लेते। इतना ही नहीं, आस पास जोधा खड़े सब ही बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। आसपास योद्धाओं की कतार लगी हुई है, सब डिंग हांकते हैं कि एक बार हम काल को भी पीछे ढकेल देंगे, सभी बजावे गाल, लेकिन मंज महल में से सारी सुविधाओं के बीच से ले चला ऐसन काल करा। गगरिया फूटने वाला जो आयु के क्षण पूरे होते हैं, तो फिर हर हालत में उस वक्त पांव की पनही काल, सुंदर सैया काल, उत्तम भोजन काल, सुरक्षा व्यवस्था काल, जो कुछ है काल। इसलिए आए हम राज पलंग चढ़ी बैठे, ये सही कि वो सही, दुविधा का हल करते करते तो आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, और फिर आंखियां से अश्रु टूटल हो, चारों तरफ रोना और धोना, चौंधी सी धू धू उठल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। खेद है कि हम घाट पे पहुंच गए थे, वो गगरी फूट गई। इधर जंगली क्षेत्रों में हमने देखा है कुछ गांवों को, वहां से 8 किलोमीटर पर पानी है और घर यहां पर है, पैदल माई लोग जाती हैं, वहां से घड़ा भर के मट्टी के घड़े लेके पानी घर लाती है। एक समय की बात थी, घड़ा लेके जहां घाट पे पहुंची तो थोड़ा सा पथरीली की नदी है, थोड़ा ढबका लगा, घड़ा फूट गया, वो माई रोने लगी और उदास होके भला बुरा कहने लगी, अपनी गायों को डांटने लगी, कह रहे चल अब घर की ओर न जाओ, वहां पानी नहीं मिलेगा, वहां चल, रघुराज राजा थोड़ा ही है जो तुम्हें यह तालाब खुदवा देगा। संयोग से वो राजा साहब उदरी से गुजरे, तुरंत उन्होंने सुना, वहां का कष्ट देखा, तो एक तालाब खुदवाया, उस तालाब का नाम है राजा तालाब। तो हम 8 किलोमीटर गए घड़ा लेकर, और दो पैर तो हो गया जाने में, और वहां यदि घड़ा फूट जाता घाट पर, फिर लौट के 8 किलोमीटर आओ, घड़े का प्रबंध करो, फिर लेके जाओ, फिर भरो, फिर आओ, 8 × 16 और 8 = 24। इतना ही दुरू है मनुष्य शरीर, अनंत योनियों का भ्रमण करते करते हम घाट पर तो पहुंचे, लेकिन धोखे ही धोखे में आयु के दिन पूरे हुए, शरीर का वो क्षण आ गया, दांत गिरे, आंखें में चश्मा लगा, और जिस क्षण की हमें चल रहा है। आखिर इतना बड़ा हमने काम क्यों नहीं किया, कल्याण का साधन शुरू क्यों नहीं किया? कारण कि हम सोचते थे कि ठीक, धोखे धोखे में गगरिया फूट गई। अंत में कहते हैं, तो घर द्वारे तक औरत जई है, कर्म कांड तक सग भाई, लोग कुटुंब मर घट लो जई है, अरुहन से अकेला जाई। और जहां गगरिया फूटी, यमराज का उचक्कर चला, पलंग पर चढ़े, सारी सुख सुविधाओं के बीच से भी जब यह प्राण पखेरु उड़ा, तब क्या हुआ? घर द्वारे तक औरत जाई हैं। औरत बहुत जोर भरेगी तो घर के दरवाजे तक, डौड़ी तक, हाय हमारे देवता, हाय हमारे प्राण, हाय हमारे सर्वस्व, देव तुमसे ये भी देखते नहीं बना, वहां तक विलाप पहुंचेगा उसका। और कर्म कांड तक सग भाई, सगा भाई जो दहनी भुजा होती है वो बहुत निभाएगा तो कर्म कांड की भली प्रकार संपन्न कर देगा, वर्ष मना लेगा। और लोग कुटुंब अमर घटलो जाई हैं, पूरा समाज चलेगा शमशान तक। भाई हमारे गांव के सम्मानित पुरुष थे, हमारे तो राजनीति का एक खंभा ही स्तंभ ही टूट गया, बड़े भले आदमी थे, बस श्रद्धांजलि दिया और लौट गए। और हंस अकेला जाए, इसके बाद इस हंस को अकेले ही जाना है। वहां पर आपका साथी है तो केवल भगवान और कोई नहीं। इसलिए जीते जी साधक को, हर मनुष्य को इतना अवश्य कर लेना चाहिए कि आत्मा अनुकूल हो जाए, वो हमारी मार्गदर्शक हो जाए, कम से कम इतनी उपलब्धि अवश्य कर लेना चाहिए। करहु सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान राम कहते हैं, सबसे संबंध तोड़ के जो सचमुच मुझसे हृदय से संबंध जोड़ लेता है, मैं सदा उसकी रखवाली करता हूं, जैसे छोटे शिशु की रखवाली माता करती है। ये चमड़ी की आंख वाली माता इस झोंपड़ी की आड़ में है, सीढ़िया के नीचे है बच्चा आपका, तो चाहे सर्फ से लिपट पड़े, चाहे आग में चली जाए, बच्चा वो रखवाली नहीं कर सकती, वहां तक उसकी दृष्टि की पहुंच नहीं। लेकिन भगवान एक ऐसी माता है, ऐसा कोई पर्दा नहीं जिसकी आड़ में उनकी निगाहें पड़ती हो, वो कण कण में व्याप्त है, सब जगह से देखते हैं, सब जगह से सुनते हैं, सब जगह से हाथ पैर वाला है। जब वो रक्षक के रूप में खड़ा हो गया तो भला मारेगा कौन? भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे ही। तो इसके हंस अकेला जाई, सारा साथ तो छूट गया, जिनको हमने अपना माना था वो उनका संबंध तो विच्छेद हो गया, अब तो इसके आगे बस केवल आत्मा ही साथी है, वो अनुकूल है। हमारा पुण्य और पाप हमारा साथी है, पाप है तो पतन की ओर गर्त में ले जाएगा, अनंत योनियों तक का भ्रमण कराएगा, अधे पतन का नाम पाप है, उदर बढ़ाने वाली कोष का नाम पाप है। और पुण्य कहते हैं जो हमें पूर्णत्व प्रदान कर दे, पूर्ण कर दे, वो पुण्य कर्म है, यही साथ देगा। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके आगे केवल आपका भजन साथी, भजन नहीं है तो आप बिल्कुल अकेले हैं, वहां कोई सहारा नहीं वहां पर। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो, पन घट पे गगरिया फूटल हो। कबीर कहता है कि जिस जगत को हम कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, जिनको देखे बिना जीना नहीं चाहते थे, जो हमारी आंखें थी, हमारे प्राण थे, उस मासूम बच्चे, उस फुलवाड़ी से, प्रिय परिवार, परम हितेशियों से नाता छूटल हो, सहसा नाता छूट जाता है, कब? जब गगरी फूट जाती है। पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, अनंत योनिया वाट घाट। मनुष्य योनि भवसागर के पार होने के लिए उपाय है। यहां भी आए तो धोखे ही धोखे में एक ठगहाई हो गई। हमने समझा था ये संपत्ति हमारी, फिर हमारी रही नहीं, वो भी निकल गई, इसलिए धोखा हुआ, ठगाई हो गई और गगरिया फूट गई। तो ऐसा उपाय करना चाहिए सबको। श्वास के रहते रहते क्रिया साधना क्रम समझो और अपने सुबह शाम रात दिन चलते फिरते नाम याद आए सोने में सुहागा, थोड़ा आचरण में ढाल दो, बस इतनी ड्यूटी है, इससे ज्यादा नहीं। सब काम करो, कुछ नहीं त्यागना है, केवल इस ड्यूटी को संभाल लो। एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, कोई अच्छे महापुरुष हो, सदगुरु हो, उनसे उस परमात्मा प्राप्ति वाली विधि क्रिया समझो और लग भर जाओ। बस श्वास के रहते हुए हम लग गए तो फिर ये धोखा नहीं होगा, भले एक दो जन्म लेना पड़े लेकिन धोखा नहीं होगा, वहां आपको सर्वत्र संबल मिलता रहेगा। पूज्य गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए, गुरुजी ने किसी पॉइंट पर मार दिया, अब लगा बच्चा रुदन कर दे करने, तो माई बोली भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। माता के वात्सल्य का इतना दबाव पड़ा, फिर पढ़ाई लिखाई का पाठ तो जीवन से उठ ही गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार वहां था दंड बैठक, कसरत और अखाड़े, लग गए उसी में मट्टी पोत के दंड बैठक, 10 गांव में नामजद पहलवान हो गए। इतना ही नहीं, कुश्ती कभी खाए नहीं थी कुश्ती। सहसा आकाशवाणी हुई 3 बार, इन महात्मा को भोजन कराओ। भोजन उनको कराया, उस 7 दिन के भूखे थे, बाद में पता चला। और दूसरी बार आकाशवाणी हुई, घोर नरक में जाओगे, महान पाप करने जा रहे हो। तो जिधर जा रहे थे उधर से सहसा घूम गए। तीसरी बार आकाशवाणी हुई, इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए। मंदिर में गए, घोर अंधकार में कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। थोड़ी सी मन में झुंझलाहट हुई कि पता नहीं हमारे मस्तिष्क में कौन जोर से बोलता है, कौन आस्ते आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज हैं और इसमें तो कोई नहीं है। इतने में खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। 3 दिन 3 रात सेवा में लग गए। इस अल्प अवधि में साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए, महाराज महाराज हो गए। कोई अनुसुईया के परमहंस जी हुए तो हमने पूछा, महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई, सबको तो नहीं होती। बोले हो, ये शंका मुझे भी थी। जहां मुझे शंका हुई कि मुझे आकाशवाणी क्यों हुई, तब अनुभव में भगवान ने मुझे बताया कि पिछले 7 जन्म से लगातार मैं साधु हूं, 4 जन्म तो झूठे। हम बोले महाराज झूठे का मतलब? बोले हूं तो साधु लेकिन क्रिया कर्म भजन जागृत नहीं है, लेकिन हूं साधु। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं, इष्ट देव रथी थे, भगवान सदा साथ में थे, योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु दो एक इच्छाएं रह गई, इसीलिए मुझे जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भगवान ने दो एक इच्छा रह गई इसलिए जन्म लेना पड़ा, एक तो गांजा पीने की, दूसरा कौतूहल था कि इस शादी विवाह क्या होता है, तीसरा देहाभिमान कि मैं कुलीन हूं। तो भगवान ने ऐसा जन्म दिया, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, नाज भी करे तो किस पर करे, भला वेद व्यास किस पर नाज करे, श्रृंगी ऋषि किस पर नाज करे, माई धोबिन बाप चमार ताकर जन्मल हम बनवार, कबीर किस पर नाज करेगा। ऐसे ही महाराज का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जन्म हुआ और फिर जिसके लिए जन्म हुआ थोड़े दिन में शादी विवाह करके दिखा सुना के तुरंत भगवान ने कहा, देखो वो गुरु महाराज और वो रास्ता। बोले हो, मौके भगवान घर छुड़ाए, मैं सचों के साधु, मौके भगवान साधु बनाए, और बात भी सही थी। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा, ये भजन ही था साथी। खींच के निकाला। गृह त्याग के पश्चात महाराज की पूर्णत्व प्राप्ति में केवल 7-8 साल लगा बस। लेकिन 8 सालों में न जाने कितने उपवास हुए। रात रात भर दिगंबर वेश में बिल्कुल जाग जाग के भजन करते ही रह गए। वर्षों बीत गए इसी प्रकार। प्रभु जब रथी हो जाते हैं तो भजन करवा लेते हैं। इसके पश्चात साधक का केवल इतना ही दायित्व है, आदेश का पालन करें कि भगवान कहते क्या, उस आदेश पर खरा उतरता जाए तो भजन सच्चा है। और इससे पूर्व जो हम लोग करते हैं करेंगे, ये भजन के प्रवेश के लिए सारा प्रयत्न है। प्रयत्न नहीं करेगा तो एडमिशन कैसे होगा। इसलिए भजन की शुरुआत यहीं से है। तो 2-2.5 अक्षर का कोई नाम, ओम अथवा राम, जो उस परमात्मा का परिचायक हो, उसका जाप करो। उसके अर्थ एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प हो जाओ और उसके अर्थ स्वरूप कोई अच्छे महापुरुष हो जो उस पथ के ज्ञाता हो, उनसे लाइन समझना चाहिए। तो एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।